लुका की मार्फत इंजील बाब 4। ईसा दरिया यर्दन से वापस आया। वो रूहुल कुदस से मामूर था, जिसने उसे रेगिस्तान में लाकर उसकी रहनुमाई की। वहां उसे 40 दिन तक इबलीस से आजमाया गया। इस पूरे अरसे में उसने कुछ न खाया। आखिरकार उसे भूख लगी। फिर इबलीस ने उससे कहा, अगर तू अल्लाह का फर्जंद है तो इस पत्थर को हुक्म दे कि रोटी बन जाए। लेकिन ईसा ने इनकार करके कहा, हरगिज नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ रोटी पर मुनहसर नहीं होती। इस पर इबलीस ने उसे किसी बुलंद जगह पर ले जाकर एक लम्हे में दुनिया के तमाम ममालिक दिखाए। वो बोला, मैं तुझे इन ममालिक की शान व शौकत और इन पर तमाम अख्तियार दूंगा, क्योंकि ये मेरे सपूत किए गए हैं और जिसे चाहूं दे सकता हूं। लिहाजा ये सब कुछ तेरा ही होगा, शर्त यह है कि तू मुझे सजदा करे। लेकिन ईसा ने जवाब दिया, हरगिज नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, रब अपने अल्लाह को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर इबलीस ने उसे यरूशलेम ले जाकर बैतुल मुकद्दस की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा किया और कहा, अगर तू अल्लाह का फर्जंद है तो यहां से छलांग लगा दे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो अपने फरिश्तों को तेरी हिफाजत करने का हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस न लगे। लेकिन ईसा ने तीसरी बार इनकार किया और कहा, कलाम मुकद्दस ये भी फरमाता है, रब अपने अल्लाह को न आजमाना। इन आजमाइशों के बाद इबलीस ने ईसा को कुछ देर के लिए छोड़ दिया। फिर ईसा वापस गलील में आया। उसमें रूहुल कुदुस की कुव्वत थी और उसकी शोहरत उस पूरे इलाके में फैल गई। वहां वो उनके इबादत खानों में तालीम देने लगा और सब ने उसकी तारीफ की। एक दिन वो नासरत पहुंचा, जहां वो परवान चढ़ा था। वहां भी वो मामूल के मुताबिक सबत के दिन मकामी इबादत खाने में जाकर कलाम मुकद्दस से पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। उसे यशायाह नबी की किताब दी गई तो उसने तोमार को खोलकर ये हवाला ढूंढ निकाला, रब का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे तेल से मसा करके गरीबों को खुशखबरी सुनाने का अख्तियार दिया है। उसने मुझे ये ऐलान करने के लिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई मिलेगी और अंधे देखेंगे। उसने मुझे भेजा है कि मैं कुचले हुओं को आजाद करवाऊं और रब की तरफ से बहाली के साल का ऐलान करूं। ये कहकर ईसा ने तोमार को लपेट कर इबादत खाने से मुलाजिम को वापस कर दिया और बैठ गया। सारी जमात की आंखें उस पर लगी थीं। फिर वो बोल उठा, आज अल्लाह का ये फरमान तुम्हारे सुनते ही पूरा हो गया है। सब ईसा के हक में बातें करने लगे। वो उन पुरफजल बातों पर हैरत ज़दा थे जो उसके मुंह से निकली और वो कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? उसने उनसे कहा, बेशक तुम मुझे ये कहावत बताओगे, ऐ डॉक्टर पहले अपने आप का इलाज कर, यानी सुनने में आया है कि आपने कफरनहूम में मौजजे किए हैं, अब ऐसे मौजजे यहां अपने वतनी शहर में भी दिखाएं। लेकिन मैं तुमको सच बताता हूं कि कोई भी नबी अपने वतनी शहर में मकबूल नहीं होता। यह हकीकत है कि इलियास नबी के जमाने में इसराइल में बहुत सी जरूरतमंद बेवाएं थीं। उस वक्त जब 3.5 साल तक बारिश न हुई और पूरे मुल्क में सख्त काल पड़ा, इसके बावजूद इलियास को उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, बल्कि एक गैर यहूदी बेवा के पास, जो सैदा के शहर सारपत में रहती थी। इसी तरह एलिशा नबी के जमाने में इसराइल में कोढ़ के बहुत से मरीज थे, लेकिन उनमें से किसी को शिफा न मिली, बल्कि सिर्फ नौमान को, जो मुल्क शाम का शहरी था। जब इबादत खाने में जमा लोगों ने ये बातें सुनी तो वो बड़े तैश में आ गए। वो उठे और उसे शहर से निकालकर उस पहाड़ी के किनारे ले गए जिस पर शहर को तामीर किया गया था। वहां से वो उसे नीचे गिराना चाहते थे, लेकिन ईसा उनमें से गुजरकर वहां से चला गया। इसके बाद वो गलील के शहर कफरनहूम को गया और सबत के दिन عبادت خانے میں لوگوں کو سکھانے لگا۔ وہ اس کی تعلیم سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ وہ اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا تھا۔ عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جو کسی ناپاک روح کے قبضے میں تھا۔ اب وہ چیخ چیخ کر بولنے لگا، اے ناصرت کے عیسیٰ، ہمارا آپ کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ کیا آپ ہمیں ہلاک کرنے آئے ہیں؟ میں تو جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ اللہ کے قدوس ہیں۔ عیسیٰ نے اسے ڈانٹ کر کہا، خاموش، آدمی میں سے نکل جا۔ اس پر بدروح آدمی کو جماعت کے بیچ میں فرش پر پٹک کر اس میں سے نکل گئی، لیکن وہ آدمی زخمی نہ ہوا۔ تمام لوگ گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس آدمی کے الفاظ میں کیا اختیار اور قوت ہے کہ بدروحیں اس کا حکم مانتی ہیں اور اس کے کہنے پر نکل جاتی ہیں؟ اور عیسیٰ کے بارے میں چرچا اس پورے علاقے میں پھیل گیا۔ پھر عیسیٰ عبادت خانے کو چھوڑ کر شمعون کے گھر گیا۔ وہاں شمعون کی ساس شدید بخار میں مبتلا تھی۔ انہوں نے عیسیٰ سے گزارش کی کہ وہ اس کی مدد کرے۔ اس نے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر بخار کو ڈانٹا تو وہ اتر گیا، اور شمعون کی ساس اسی وقت اٹھ کر اس کی خدمت کرنے لگی۔ جب دن ڈھل گیا تو سب مقامی لوگ اپنے مریضوں کو عیسیٰ کے پاس لائے، خواہ ان کی بیماریاں کچھ بھی کیوں نہ تھیں۔ اس نے ہر ایک پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے شفا دی۔ بہتوں میں بدروحیں بھی تھیں جنہوں نے نکلتے وقت چلا کر کہا، تو اللہ کا فرزند ہے، لیکن چونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ مسیح ہے، اس لیے اس نے انہیں ڈانٹ کر بولنے نہ دیا۔ جب اگلا دن چڑھا تو عیسیٰ شہر سے نکل کر کسی ویران جگہ چلا گیا، لیکن ہجوم اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اس کے پاس پہنچا۔ لوگ اسے اپنے پاس سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن اس نے ان سے کہا، لازم ہے کہ میں دوسرے شہروں میں بھی جا کر اللہ کی بادشاہی کی خوشخبری سناؤں، کیونکہ مجھے اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ وہ یہودیہ کے عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا۔